नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। आज हम इस सवेरे के सत्र में 16 फरवरी के सवेरे के सत्संग में श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय से 18वां श्लोक पढ़ने वाले हैं। सब लोग दोहराइए, विद्या विनयेन संपन्ने, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी, सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी, सुनी चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। अर्थात विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण गाय हाथी कुत्ता तथा चांडाल इन सबको समान दृष्टि से समभाव से देखते हैं। तात्पर्य, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किसी प्रकार का भेद नहीं मानता। सामाजिक दृष्टि से ब्राह्मण तथा चांडाल भिन्न भिन्न हो सकते हैं, अथवा योनि के अनुसार कुत्ता गाय हाथी भी भिन्न हो सकते हैं, लेकिन विद्वान योगी की दृष्टि में ये शरीर का भेद अर्थहीन होता है। इसका कारण परमेश्वर उनका संबंध है और परमेश्वर परमात्मा के रूप में हर एक हृदय में स्थित है। परम सत्य का ऐसा वास्तविक ज्ञान है। जहाँ तक विभिन्न जातियाँ विभिन्न योनियों का शरीर का संबंध है, भगवान सब पर समान रूप से दयालु हैं, क्योंकि वे प्रत्येक जीव को अपना मित्र मानते हैं। फिर भी जीवों की समस्त परिस्थितियों में वे अपना परमात्मा रूप बनाए रखते हैं। परमात्मा रूप में भगवान चांडाल तथा ब्राह्मण दोनों में उपस्थित रहते हैं। यद्यपि इन दोनों के शरीर एक से नहीं होते, शरीर तो प्रकृति के गुणों के द्वारा बनाया गया है, किंतु शरीर के भीतर आत्मा और परमात्मा समान आध्यात्मिक गुण वाले हैं। परंतु आत्मा तथा परमात्मा की समानता उन्हें समान नहीं बनाती, क्योंकि व्यष्टि आत्मा किसी विशेष शरीर में उपस्थित होता है, किंतु परमात्मा शरीर प्रत्येक शरीर में होता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को इसका पूर्ण ज्ञान होता है कि इसीलिए वो सचमुच ही विद्वान तथा समदर्शी होता है। आत्मा तथा परमात्मा के लक्षण समान है, क्योंकि दोनों चेतन शाश्वत और आनंदमय है, किंतु अंतर इतना ही है कि आत्मा शरीर की सीमा के भीतर ही सचेतन रहता है, जबकि परमात्मा सभी शरीरों में सचेतन रहते हैं। परमात्मा बिना किसी भेदभाव के सभी शरीरों में विद्यमान रहते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपक कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। विद्या विनय संपन्ने जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो वो ज्ञान की व्याख्या क्या है? हम डॉक्टरी पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, MBA पढ़ते हैं, लेकिन ज्ञान की व्याख्या की गई है कि जब हम समझते हैं कि हम शरीर नहीं हैं और आत्मा है, इसको ज्ञान का पहला कदम कहा गया है। इसको समझना इतना आसान नहीं है। लोग MD MS PhD करने के बाद भी शायद ये नहीं समझेंगे प्राकृतिक रूप में, मतलब प्रैक्टिकल रूप में, कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं और हमारे अंदर परमात्मा विराजमान है और हम भगवान के अंश हैं और भगवान की सेवा हमारा धर्म है। ये सब मूलभूत ज्ञान है, इसके ऊपर आगे का ज्ञान। तो जो विद्या विनय संपन्न, यानी केवल विद्या नहीं, जब विद्या होती है बहुत सारी, आध्यात्मिक क्यों ना हो या PhD MBA वाली क्यों ना हो, दोनों विद्याएं गर्व देती हैं। एक बार स्कूल में था तो बहुत नम्र होता था, जब MD बन गया तो फिर अलग व्यवहार होने लगा, क्योंकि विद्या भी एक ऐश्वर्य है और विद्या प्राप्त होने पर घमंड उत्पन्न होता है। तो केवल विद्या पर्याप्त नहीं है, ऐसे कहते हैं अगर बहुत बहुत विद्या हमने प्राप्त कर लिया है तो समुद्र में डूबने वाले व्यक्ति के सर पर वो मुकुट की तरह होती है, बहुत सुंदर मुकुट, वजनदार। अगर वो समुद्र में डूब रहा है तो मुकुट का वजन और उसको जल्दी डुबाता है। तो विद्या, भगवान के भक्ति के बिना विद्या जो है वो बहुत खतरनाक मानी गई है। इसलिए ऐसे कहा गया है कि भक्तों को, ब्रह्मचारियों को बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त नहीं करना चाहिए, 500 ग्रंथ का अभ्यास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मैंने ये पढ़ा है ये समझ के उसमें घमंड उत्पन्न होता है। तो विद्या विनय संपन्न, विद्या के साथ में विनय यानी नम्रता होनी चाहिए। जब नम्रता होती है तो फिर वो विद्या सही जगह पर सही काम करती है, उसका उपयोग सही दिशा में होता है। जब विद्या घमंड के साथ आती है तो वो नरक का दिशा दिखाती है। आध्यात्मिक विद्या होने पर भी, पर मुझे ये गर्व है कि मुझे बहुत नॉलेज है, बहुत श्लोक आते हैं मुझे, मैं कहीं भी बैठ के कभी प्रवचन कर सकता हूँ, ऐसा अगर घमंड आता है तो वो हमें धीरे धीरे हमारा दिशा मुड़ के राइट टर्न लेके नरक की ओर जाने लगता है। लेकिन हमको ये पता होना चाहिए कि विद्या और अनुभूति ये दोनों अलग चीज़ें हैं। अनुभूति यानी जो हमने पढ़ा है, उसका साक्षात्कार किया है, उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किया है, उसको अनुभूति कहते हैं, साक्षात्कार कहते हैं। और पढ़ा लिखा ज्ञान तो बहुत हो सकता है, हमने कंठस्थ ये श्लोक पढ़ लिया, वो श्लोक पढ़ लिया, लेकिन एक श्लोक का भी जीवन में अनुभव नहीं किया है, उसको जीवन में उतारा नहीं है, तो सारा ज्ञान इस प्रकार का एक बड़ा बोझ बन जाता है आत्मा के ऊपर, और आत्मा का कल्याण करने के बिना वो आत्मा का विनाश की ओर लेके जाता है। तो विद्या विनय संपन्न, जब विद्या के साथ में सविनय व्यक्ति जीवन में अपने आप को रखता है तो फिर चमत्कार होता है। वो चमत्कार क्या है? वो व्यक्ति हर प्रकार के जीव को एक ही रूप में देखता है, कोई भेदभाव नहीं करता है उसके अंदर। हमारा कैसा होता है, अरे ये धनी आदमी आया, ये बहुत सुंदर व्यक्ति आया, ये बहुत फेमस व्यक्ति आया, और ये बहुत पावरफुल है, इसको अच्छा ट्रीटमेंट दो, ये बहुत VIP आदमी है, ऐसा हमारा भाव रहता है। वो भगवान की सेवा के लिए कर भी सकते हैं हम वैसा अलगता, लेकिन मूल रूप से जितना स्वरूप धनी व्यक्ति का है आत्मा का, उतना ही आत्मा का स्वरूप गरीब व्यक्ति का भी है, सेम है वो। चाहे वो बहुत भयंकर धनवान होगा लेकिन उसका आत्मस्वरूप का जो आकार है और भगवान का जो संबंध है वो सबका समान है। एक रास्ते का भिखारी भी बैठा है उसकी भी आत्मा उतनी साइज की होती है जितनी धनी व्यक्ति की होती है। तो विद्या विनय के संपन्न से संपन्न होकर जब हम प्राप्त करते हैं तो हमारे पास ये दृष्टि उत्पन्न हो जाती है, ये उसका प्रमाण है कि आपकी विद्या आपको नरक में नहीं लेके जा रही है। उसका प्रमाण क्या है कि वो विद्या आपको सब व्यक्तियों को समान देखने में ज्ञान देती है, मतलब प्रवृत्त करती है। अभी ब्राह्मण, ब्राह्मण ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणः संस्कारात भवेत द्विज, जन्मना जायते शूद्र संस्कारात भवेत द्विज, और ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणः। ये ब्राह्मणों का भी ग्रेड होता है, जन्म से सब लोग शूद्र होते हैं, हम सब लोग जन्म से शूद्र होते हैं, क्योंकि हम लोग का किसी का संस्कार नहीं हुआ है जन्म के पहले, किसी के माता पिता ने गर्भाधान संस्कार करके हमको नहीं लाया है, केवल संबंध करके हम लोग आए। लेकिन संस्कारात भवेत द्विज, जब संस्कार होते हैं मनुष्य के ऊपर तो वो द्विज यानी दूसरी बार जन्म लेता है, सेकेंड टाइम बर्थ। फिर वो पढ़ता है, फिर वो विप्र बन जाता है, ज्ञान प्राप्त करता है, लेकिन यहाँ पर भी समाप्त नहीं होता है। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणा, जब ये पढ़ाई वगैरह करके विप्र बनने के बाद वो जो अनुभव करता है कि ब्रह्म क्या है, तो ब्राह्मण हो जाता है। उसके बाद में वैष्णव है, ब्रह्म जानाति ब्राह्मण करके समाप्त नहीं होता है। उसके बाद में जब वो भगवान का भक्त हो जाता है, समझने के बाद समझ में आया कि ब्रह्म क्या है, हम क्या है, लेकिन उसको अमल में उतारने वाला जो वैष्णव होता है, तो सर्वोच्च कोटि है ये, तक देवताओं से भी ऊपर की कोटि है ये स्थान। और एक तरफ फिर बाकी व्यक्ति है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, फिर यवन है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो है ये वर्णाश्रम में आते हैं, उनके नीचे यवन है, यवन यानी जो मांस खाते हैं, उनके नीचे म्लेच्छ है, म्लेच्छ यानी वो मांस खाते हैं और सुअर का मांस भी खाते हैं, जो हमारा टट्टी खाते हैं उसको भी खाते हैं, उसको म्लेच्छ माना गया है। और उसके भी नीचे एक है, कौन है वो, चांडाल। चांडाल न केवल मांस खाता है, न केवल सुअर का मांस खाता है, लेकिन वो कुत्ते का मांस भी खाता है। और जो भगवान ने व्याख्या नहीं किया, ऐसे कुछ लोग आज पैदा हो गए, वो कौन है, वो चिपकली भी खाते हैं, बिच्छू भी खाते हैं, सांप भी खाते हैं, मक्खी भी खाते हैं, मधुमक्खी भी खाते हैं, वो रहते हैं लोग बहुत सारे देश में रहते। प्रभुपाद जी ने एक बार कहा था कि देर आर फोर रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स बट इन साउथ अफ्रीका देर आर फाइव रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स। क्या, नो मेडिटिंग, नो इलासिव सेक्स, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग एंड नॉट ईटिंग फ्लाइज ड्यूरिंग भागवतम क्लास। क्योंकि उधर इतने लोग पतित थे कि भागवतम कथा में ऐसे छट करके मक्खी उड़ा के खा देते, ऐसे लोग भी हैं। तो इतने गिरे हुए लोग जो कुत्ते का मांस खाते हैं उनको सबसे हीन माना गया। हमारे सऊदी अरब में हम लोग कैंप में रहते थे, हॉस्टल में, तो एक अलग कैंप था फिलिपिनी लोगों का, उस कैंप में जब वो लोग बनाया तभी बहुत कुत्ते थे, कुछ समय बाद सारे कुत्ते गायब हो गए, सारे खा गए वो, क्योंकि वो देश में सब खाते हैं। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य क्या है कि चाहे वो चांडाल हो, वो चांडाल के नीचे वाला हो, अभी नई नई जाति उत्पन्न हो रही है, या वो ब्राह्मण हो, हाँ भक्त मंदिर में दिखाई पड़ते हो, वो सभी लोगों को, जिसको विद्या प्राप्त हो गई है और जो सविनय है, जो नम्र है, वो सबको समान देखता है। इसका मतलब ये नहीं कि जो शेर को देख के भी गले लगा देता है, हरे कृष्णा प्रभु, ये नहीं, प्रैक्टिकल रूप में वो समझेगा कि ये शरीर बहुत खूंखार है, मुझे खा सकता है, तो दूर से प्रणाम करे, लेकिन देखते समय उसमें भेदभाव नहीं करेगा, उसमें वही आत्मा देखेगा जो मनुष्य में देखता है, जो खुद में देखता है, जो ब्राह्मण में देखता है, और उसी आत्मा को चांडाल में भी देखेगा, उसी परमात्मा को भी सब जीव में देखेगा, वो उस प्रकार से उसका व्यवहार समान रहता है, उसकी दया जो है वो सबके लिए समान रहती है, उसकी करुणा जो है वो समान होता है। ये हमारे इधर भी कैंप में भी बहुत जरूरी है ज्ञान प्राप्त करना। हम लोग जो कोई वीआईपी आएगा तो तुरंत हे वीआईपी आ गए सारे साइड फर्स्ट नंबर पर, कुछ नहीं पहले डॉक्टर को दिखा दो, तो गरीब आया कोई तो उसको हम चिल्लाते हैं, अरे भैया सुनती नहीं क्या, कब से पुकार रहे हो, सो रही है क्या, चलो नंबर है आपका अभी। ऐसा हम लोग वार्ड में कभी कभी करते हैं, लेकिन जब हमको बताया गया है कि सब भगवान के विशेष भक्त हैं, तो हम लोग ओरिएंट नहीं होते ना, हमारे पास वो ज्ञान नहीं है, इसलिए हम लोग उनको चिल्लाते हैं, अरे क्या है हमारे लोग, कब से पुकार रही है वो, सो रही है वो, कब से हमको ओटी का नंबर आया, अभी सो रही है, क्या कर रही है मैया, जल्दी उठो। और कोई बस अच्छा कपड़ा वगैरह पहन के आया तो उसको प्रभु जी जरा, ये हमारा जड़ बुद्धि है, भौतिकता के आधार पर हम लोग भेदभाव करते हैं, हमारा व्यवहार बदलता है, लेकिन जो संत होता है वो समान दृष्टि होती है उसकी, उसकी सेवा भी समान होती है, वो जो सेवा करने बैठता है तो कोई भेदभाव नहीं करता है कि ये सेवा का मुझे बड़ा नाम होगा, ये सेवा की वजह से मेरे गुरुजी की तरफ रिपोर्ट जाएगा, और ये सेवा क्या है गुरुजी की पूछेंगे नहीं, मैं क्यों नहीं करना है वो सेवा। समानता मतलब हर दृष्टि में समानता, वो किसी जब सविनय विद्या प्राप्त करता है तो कभी गर्व के लिए, नाम के लिए, ख्याति के लिए वो सेवा नहीं करता है, वो सेवा करता है भगवान के लिए, उसको विश्वास है इस ज्ञान के आधार पर कि भगवान देख रहे हैं उसको, चाहे दुनिया के कोई अधिकारी देखे रिपोर्ट करे ना करें, वो भगवान के लिए करता है और उसको किसी भी प्रकार का सम्मान की आवश्यकता नहीं होती है। तो हमें अपने सेवा में वो बात आना जरूरी है। अगर आपको वो भावना आ गई है समानता की, तो ये माना जाएगा कि आप सबका ज्ञान आपको हो गया है, क्योंकि सार रू जो है वो आपको समझ में आया है। इसका मतलब जैसे कि अगर आप मनुष्य बन चुके हैं भारत में, तो ये प्रमाण है कि आपने पिछले जन्मों में बहुत सारे पुण्य कर लिए, इसलिए आपका जन्म मनुष्य भारत में हुआ है। और भगवान का नाम का जप करते समझो आप, तो शास्त्र कहता है कि जो व्यक्ति भगवान के नाम का जप करता है, उसका मतलब यह है कि पिछले जन्मों में उसने सारे तीर्थ किए हैं, सारे भागवत भगवद गीता पढ़े हैं, सारे पुण्य कर्म किए हैं, दान धर्म किया है, नदी में स्नान किया है, तीर्थ स्नान किए हैं, सब कुछ करने के बाद भी व्यक्ति को हरिनाम प्राप्त होता है। तो अगर आप हरिनाम करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, मतलब आपका ये सिद्ध हो गया, ऐसा है। इस प्रकार से हम कंक्लूड करते हैं, हमने आपको देखा नहीं पुण्य कर्म करते हुए, लेकिन आपके व्यवहार में जीवन में जो हम दर्शन कर रहे हैं, उसका ये प्रमाण है कि आपने पीछे वो किया होगा। अभी बुखार था आपको, भाई बुखार उतर गया, मतलब आपने गोली ले ली होगी, ये हम समझ सकते हैं। तो इसी तरह से अगर आपके व्यवहार में वो बात आ गई कि आप जब किसी से व्यवहार करते हो तो उसको भेदभाव नहीं करते हो, किसी भौतिक स्थिति के आधार पर भेद नहीं करते हो, तो इसका मतलब ये हो गया कि शास्त्र का सार आपके हृदय में प्रकट हो गया है। और ये शास्त्र का सार आपके हृदय में प्रकट हो सकता है गुरु की कृपा से। तद विज्ञानार्थम कोई आगे शब्द है उसका, इसका मतलब सारा विज्ञान जो है, ज्ञान नहीं, विज्ञान मतलब साक्षात्कार वाला ज्ञान, वो गुरु की कृपा से शिष्य के हृदय में प्रकट होता है, कि संत की कृपा से प्रकट होता है। संत जो है वो आपके हृदय में वो ज्ञान का सार बिठा सकते हैं, उसको फिट कर सकते हैं। जैसे हम लोग अभी आजकल मोबाइल में वो मेमोरी कार्ड में वो भरते हैं ना, सब कुछ जाके भर देते हैं, अरे भजन भर दो जरा, भजन भर के सुनते हैं। तो वैसे हमारे अंदर के निटिंग, हमारे अंदर के साई भाव में संत लोग वो समभाव स्थापन करते हैं। और हमको समभाव स्थापन क्यों करना चाहिए हृदय में, क्योंकि भगवान भी समभाव है। समोहम सर्वभूतेषु, किसी का द्वेष नहीं करते, किसी को प्रेम ज़्यादा नहीं करते हैं, भक्तों को फेवर करते हैं, जन अनुकूलता दिखाते हैं, लेकिन भेदभाव नहीं करते हैं। जब अपना पुत्र जब पाप करता है, राक्षस बनता है, तो अपने पुत्र का खुद अक्के हाथ से वध करते हो, नरकासुर का वध उन्होंने अपने हाथ से किया है, उनका पुत्र है वो, लेकिन राक्षस का भाई है विभीषण, उसको गले लगाया उन्होंने, रावण का भाई था वो, कट्टर शत्रु का भाई था, इसने पत्नी को छीन के ले गया वो। तो आप बोलेंगे ये इसमें ये परिवार से किसी को देखना नहीं, मुझे सबको नाश कर दूंगा मैं, इन परिवार का है, इन्होंने मुझे पत्नी को छीना है, सबका नाश कर दूंगा, नहीं, उसमें भी सारा सार बुद्धि भगवान की इतनी श्रेष्ठ है कि जो भक्त है उसको अलग से रखा उन्होंने, भक्त के साथ में भी जो आए चार लोग उसको भी अलग रखा, उसको भी जीवन दान दिया, और जो पाप के पक्ष में रहे उन सबका वध किया उन्होंने। इसको समानता कहते हैं। और भगवान की समानता देखिए आप, जब विभीषण आए ना भगवान के पास तो सबने विरोध किया, भगवान ने मीटिंग किया, भगवान बहुत चतुर हैं, भगवान कभी भी झट से निर्णय लेते नहीं है, वो इत्मीनान से लेते हैं। मैंने सुग्रीव और हनुमान और जाम्बुवंत जितने बड़े बड़े योद्धा थे, नेता थे, उनका सबका मीटिंग किया, उन्होंने पूछा, वो देखो आकाश में खड़े हैं, वेटिंग में हैं चार लोग, विभीषण नेता है उनके, उनको आना है हमारे पास, क्या करना चाहिए? सबने नहीं भगवान नहीं करना चाहिए, इनको लेना नहीं चाहिए, ये तो शत्रु के कुछ षड्यंत्र रचा के आए हैं, कुछ पॉलिटिक्स है उसके अंदर, अंदर घुस के सब पता करना चाहते हैं, ये बहुत मायावी है, इनके पास बहुत सारी विद्याएं हैं, यहाँ बैठ कर सब खबर वहाँ दे सकते हो, हमारे पास मोबाइल है, उनके पास मोबाइल की जरूरत भी नहीं उनका ऐसा ज्ञान था, उनके पास ऐसी विद्या थी कि अदृश्य होते थे, हवा में उड़ते थे, क्या क्या करते थे वो, तो इनको कतई तौर पर यहाँ पर लेना नहीं चाहिए। तो कुछ लोगों ने कहा कि केवल लेना ही नहीं चाहिए, अभी आया है ना उनको मार देना चाहिए, ऐसे भी लोगों का मूड होता है। भगवान ने सबका मूड शांति से सुन लिया, किसी पर कमेंट नहीं किया, क्या आप गलत हो, ऐसा कुछ सोचते हो, नहीं, सुन लिया, आपका भी ओपिनियन है, इनका भी ओपिनियन, सबका सम्मान किया। फिर हनुमान जी को पूछा, हनुमान जी आपका क्या विचार है? तो हनुमान जी ने कहा कि इसको जरूर हमारे गुट में लेना चाहिए, एकदम विपरीत उत्तर दिया उन्होंने, क्योंकि मैं जब गया था सीता के खोज में तब ये अपनी झोपड़ी में बैठकर राम नाम आपका नाम जप कर रहा था। इसकी इतनी धाड़स है इसके अंदर, इतना करेज है कि रावण के किंगडम हाँ मध्य में रहकर भी उसके अंदर इतना करेज है, इतना धैर्य है, इतना धाड़स है कि वो आपका नाम ले सकता है। घर में सामने तुलसी है उसके, सब जगह कम झोपड़ी के ऊपर शंख चक्र पद्मगदा का निशान लगा कर रखा है उसने, और सारे झोपड़ी में सब तरफ दीवार पे राम का नाम लिखा है, आपका नाम लिखा है। मैं उनको मिला भी उस जाके, मैं बहुत प्रभावित हो गया, और उनके राम नाम के ध्वनि से ही मैं आकर्षित होकर उस झोपड़ी में गया था। कौन है इसके अंदर, इतने रावण के लंका नगरी में किसकी हिम्मत हो सकती है? तो ये भक्त है आपका, ये वैष्णव है, इसको लीजिए आप। तो भगवान ने इसको स्वीकार किया, और भगवान ने जैसे स्वीकार किया आते ही भगवान ने डिक्लेयर कर दिया, विभीषण हम लंका का राज्य आपको दे देंगे। अभी युद्ध युद्ध कुछ हुआ नहीं है, अभी तो बहुत दूर की बात है, युद्ध में कौन जीतेगा कौन हारेगा वो भी पता नहीं है, लेकिन भगवान ने वादा कर दिया कि आपको रावण लंका का राज्य दे देंगे, लंकाधीश बनाएंगे आपको। तो कुछ भक्तों ने कुतूहल से पूछा, फिर भगवान फिर रावण आएगा तो क्या करेंगे? तो भगवान ने कहा कि रावण भी अगर शरण होके आता है जैसे ये आया है तो मैं रावण को भी माफ़ कर दूंगा। ये भगवान की समानता है। भगवान ने रामायण में कहा है अगर रावण भी अगर शरणागत होकर वापस आता है, माफ़ी मांगता है और सीता को वापस कर देता है तो मैं उसको जीवन दान दे दूंगा। बोला अच्छा, तो अभी तो हमने तो आपने तो लंका का राज्य विभीषण को दे दिया, फिर रावण को क्या देंगे? तो रावण बड़ा भाई है, उसका राज्य था ये। तो बोले रावण को मैं अयोध्या का राज दे दूंगा। फिर आप रावण अयोध्या में जाएंगे तो आपका क्या होगा, आप कहाँ रहेंगे? बोले मैं सब भक्तों के हृदय में रहूंगा। ये हमारे भगवान है, इतने विरक्त हैं, सब कुछ देना चाहते हो। अभी रावण को अभय दान देना और रावण को माफ करना, ये कितनी बड़ी बात है। ये खुद की पत्नी जिसने छीन कर उसका भोगना चाहा, उसको इतना अत्याचार किया है, हाँ इतनी क्रूरता से उसको लेके गया, एक खिलौने की तरह, है ना, भोग्य वस्तु की तरह। एक परम देवी, भगवान की परम सती पत्नी थी वो, आदर तो दूर रहा, उसको ऐसे हैंडल किया उसने, मिस हैंडल बोलते ना, मैन हैंडलिंग बोलते उसको, एकदम गलत व्यवहार से उसको ले गए हो, जैसे कोई रखेल को ले जाता है या किसी खिलौना को लेके जाता है, इतना अपमानास्पद लेके गया उसको, जंगल में इतना भयंकर अवस्था में रखा, राक्षसियाँ रोज उसको धमकी देते थे, खा जाएंगे तुमको, नाश्ते में खाएंगे, हाँ बोल हाँ बोल, रावण के लिए मंजूर करना, रावण को स्वीकार करना, ऐसे करके रोज धमकियाँ के लिए राक्षसों का रखा था, राक्षसियों का चंगुल, और बीच बीच खुद भी आते थे और राम का कटा हुआ सिर मायावी दिखाते थे, देखो मैं वध करके आया हूँ उसको, अभी तो हाँ बोल, कितना घिलौना व्यवहार किया एक सती के साथ में। एक सती के साथ में विचार करना भी ऐसा कितना पाप है, तो वो तो प्रत्यक्ष का एक्टिविटी कार्य कर रहा है वो उसको। ऐसे व्यक्ति अगर मेरे पास आएंगे माफ़ी बनकर, माफ़ी मांगते हुए, तो मैं उनको माफ़ कर दूंगा। तो भगवान ने कभी, और रावण को उन्होंने समानता का कैसा प्रमाण है उसका, भगवान ने रावण को लास्ट तक मौका दिया, अभी भी मौका है, अभी भी आप वापस कर दो, युद्ध समाप्त हो जाएगा, कुछ युद्ध करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ तक कि खुद ने भी मौका दिया, फिर मैं दानव जो उनके ससुर जी हैं, मंदोदरी के पिता हैं, उन्होंने भी मनाया, जितने वीर थे कि जब भी युद्ध में गए उन्होंने भी बताया, और स्वयं उनका पुत्र जो कट्टर दुश्मन था राम का, वो भी बीच में युद्ध में विराम लेकर लौट के आया, बोला पिताजी मैं समझ गया हूँ कि मैंने इन पर ब्रह्मास्त्र चलाया, तो वंदन करके प्रदक्षिणा करके लौट के आया लक्ष्मण को, मैंने पशुपतास्त्र चलाया, त्रिशूल चलाया, वो भी वंदन करके प्रदक्षिणा करके लौट के आया, मैंने नारायणास्त्र भी चलाया इसके ऊपर, तो भी वो वंदन करके परिक्रमा करके चला आया, ये केवल भगवान ही हो सकते हैं, इसके बिना ये तीन शस्त्र किसी को छोड़ते नहीं हैं। तो मुझे यकीन हो गया है कि ये भगवान है, परब्रह्म है, और इनके साथ आप युद्ध मत करना, दुश्मनी मत करना। तो रावण क्या बोलता है, तो डर के मारे ऐसे बोल रहे हैं, तो डर गया है, जा तुझे युद्ध नहीं करना है तो मत कर, आराम कर जाके, ये मेरा युद्ध है मैं लड़ूंगा। यहां तक भगवान ने उसको किसी न किसी माध्यम से मौका दिया कि लास्ट तक जैसे उन्होंने कौरवों को भी लास्ट तक मौका दिया, खुद जाके दूत यानी एकदम बहुत ऐसा, इट्स नॉट अ बिग थिंग टू बिकम दूत मैसेंजर, भगवान मैसेंजर बने पांडवों के, और दुर्योधन के सामने जैसे पापी व्यक्ति है वो इतना पतित, उसके सामने उन्होंने विनती किया कि चलो राज्य मत दो आधा वधा, पांच गांव दे दो उनको, पांच गांव। अरे पांच गांव क्या होते हैं, अर्जुन जैसे वीर के लिए एक गांव, जैसे करेला का गांव है, हाँ 25,000 की बस्ती है, वो अर्जुन को राजा बना दिया उसका, कैसा लगता है आपको? भगवान ने फिर भी कहा कि कोई बात नहीं, अगर युद्ध मिटाना है, अगर कोई वाद विवाद समाप्त करना है तो उनको पांच गांव दे दो और बाकी सब तुम ले लो, इतना तक मौका दिया, ये उनकी समानता है। भगवान सबको मौका देते हैं, पापी से पापी व्यक्ति को, ये उनकी समानता है, क्योंकि वो इस तरह समान है, सब में समभाव रखते हैं, क्योंकि वो जानते हैं ये भी मेरा पुत्र है, वो भी मेरा पुत्र है, अर्जुन भी उतना ही पुत्र है जितना मेरा पुत्र दुर्योधन है, क्योंकि ममय वांछे जीव लोके, और व्यवहार में उन्होंने दिखाया है। इसलिए हमें भी उनका, अगर हम अपने आप को भक्त मानते हैं तो हमें भी समानता दिखानी चाहिए। कल की कथा में हमने क्या कहा था कि हमारे लिए क्या करना चाहिए, जो हमारा नुकसान करते हैं, एक प्रकार से हमारे शत्रु हैं, हमारा अहित चाहते हैं, उनके प्रति भी द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए, इतना समभाव होना चाहिए। भक्तों के प्रति तो अच्छे लोगों के प्रति होना ही चाहिए, लेकिन जो शत्रु है, जो हमारा अहित करने वाला है, हमका नाश करने की चिंतन करते रहता है, उसके बारे में भी द्वेष रखना नहीं है, शत्रुता घृणा रखनी नहीं है। और उसके आगे जाकर भक्ति सिद्धांत जी महाराज कहते हैं कि उनके प्रति भी कल्याण के बारे में सोचना चाहिए, उनका कल्याण कैसे किया जाए, कैसे उनको प्रसाद पहुंचाया जाए, कैसे उनको भगवान की प्रसाद ही पहुंचाई जाए। यूं क्योंकि वो जानते हैं कि कोई पापी व्यक्ति पाप के वजह से पापी बनता है, मूलतः वो पापी नहीं होता है, पाप उसको पापी बना देता है। अगर पाप उसका नष्ट किया जाए, इस जगह बजाई का पाप नष्ट हो गया तो परम भक्त हो गए वो तुरंत। भक्त की ये दृष्टि है, बहुत दिव्य और बहुत गहरी दृष्टि भक्तों की होती है। तो विद्या विनयन संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्तिनी, या हाथी हो, ब्राह्मण हो, या चांडाल हो, या शूद्र हो, सबको वो समान देखता है। समान देखता ही नहीं है, उनके साथ व्यवहार भी समान करता है, उनको मौके भी समान देता है, उनकी सेवा भी समान भाव से करता है। ऐसा हम रहेंगे ना तो हमारा जीवन हर क्षण धन्य है, मौत तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है, वैकुंठ तक पहुँचने की जरूरत नहीं है कि हम वहाँ जाके योग्य बनेंगे, नहीं यहीं से आप योग्य बन सकते हैं। सारा उसका जो फॉर्मूला है उसके अंदर दिया हुआ है, इतना महान ज्ञान है ये जो भगवान ने, इतना महान ज्ञान है कि वो युद्ध भूमि के पहले इतना प्रकट, क्या कहते हैं उसको, इतना कठिन समय है उसमें, इतना कठिन प्रसंग है, बांका प्रसंग है, उसमें उन्होंने ये ज्ञान दिया है एकदम प्रैक्टिकल। तो सो बैठा हुआ आदमी उठकर खड़ा हो गया, फिर युद्ध करने लगा, ऐसे ज्ञान में ही सब कुछ दिया है। आप सब लोग उसको चिंतन कीजिए, उसके ऊपर आज की सेवा में भी चिंतन कीजिए कि हम किसी को भेदभाव नहीं करेंगे, किसी पर चिल्लाएंगे नहीं, किसी को आदर ज़्यादा नहीं करेंगे, किसी को कम आदर नहीं करेंगे, सबको समभाव से सेवा करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। हरे कृष्णा।